आज की रिसेंट अभ्यर्थवाणी है 24/2/2017। ब्रैकेट में दिया है 81वीं शिव जयंती पर। आज के दिन की मुबारक। मुबारक मुबारक मुबारक। सभी के दिलों में कितनी खुशी है। सभी के दिल में बाबा आ गए हैं। तो सभी के दिलों में अभी कौन? बाबा। सभी के दिलों में बाबा ही बाबा। जहाँ देखो बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, बाप दादा ने हाथ हिलाया, बहन ने अनाउंस किया, सभी भाई बहने झंडियां नीचे करें, बाप दादा वरदान सुनाएंगे, कोई भी झंडी ना हिलाए। बाप दादा हाथ हिलाते रहे। न्यूलू बहन ने बाबा को कहा अभी हो गया। हाँ भले करो। बहन ने कहा बोलो। तो बोलोगे ना? अभी हाथ नहीं उठाना। तो आज सभी बहुत हर्षित हो रहे। किस लिए हर्षित हो रहे हैं? बाबा स्वयं बच्चों को माला पहनाने के लिए आए हैं और बाबा गले में माला पहनाए तो कैसे हो जाते हैं? तो अभी एक एक के गले में बाबा ने माला पहनाई है और सभी मालाधारी कितने शोभनीक लग रहे हैं। सब एक दो की माला को देख करके खुश हो रहे हैं और सदा हर एक को बाप दादा की तरफ से माला है ही। माला का श्रृंगार हमारा गाया हुआ बहुत है, इसलिए आज भी वो यादगार जो है वो याद आया और सब माला के दाने पहने हुए कितने चमक रहे हैं। वाह कमाल है, कमाल है यहाँ दिल्ली के बच्चों की। जो जहाँ तहाँ माला डाल दिए हैं दिल्ली में। सारा हाल मालाओं से आज सज रहा है। तो मालाओं का याद किसका है? आपका और बच्चों का। कितना भी कोई कहे बाबा का याद है बहुत बहुत अच्छा। बाबा का याद तो है ही, बिना बाबा के आप क्या करेंगे? है ही यादगार। तो पहले नंबर का यादगार तो भाई और बहनों का है, जो सचमुच मेहनत करके अपने को भी सजाया है और सहालों को भी सजाया है, चारों ओर खुशी का मेला लग रहा है, तो कितना अच्छा फंक्शन लग रहा है। जैसे अभी अभी बाबा ने सजा कर मालों से आपको तैयार करके बिठाया है, क्योंकि बाबा के साथ अकेला बाबा नहीं सजता है, बाबा के साथ सभी को, भाइयों को, बहनों को थोड़ा भी बहुत सजाना पड़े। आपकी मालाएं दूर से ही सज रही है और बाबा भी देख देख करके, चारों ओर की मालाएं देखकर बहुत खुश हैं कि वाह, आज बच्चे माला का मणका पहन के कितने राज, कितने राज में सज गए हैं। तो आज की सभा की सजावट देख करके बाबा खुश हो रहे हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। एक दो की सजावट को देख करके ही खुश हो गए हैं और बाबा को कितनी खुशी हो रही है, एक एक बच्चे को देख करके ऐसे मुस्कराते हैं जो आप देख रहे हैं। बाबा वैसे ही रियल हार, ये तो फूलों का, उनका तो है ही, लेकिन बाबा हर एक के गले में ओरिजिनल माला, कौन सी मेला पहनी है, चमकती हुई मालाओं का हार देखो सभी को मुखों में, सभी के गले में पड़ा है। और फूलों से बाबा ने देखा तो कितना भी कोई चाहे, कोई करे श्रृंगार, कोई नहीं करे, लेकिन सब के मुख से वाह वाह तो निकल रहा है ना। वही माला है ये माला, कितनी आज सज रही है, माला श्रृंगार है। तो इस देश में अभी सबसे बड़ा श्रृंगार किसका है? इस देश में इस देश की तरफ इशारा किया होगा, इस देश में सबसे बड़ा श्रृंगार किसका है? बाबा का। बाबा ने सबके गले में देखो हार पड़ा है, तो बाबा ने खुद माला का हार पहनाया है। वो कामन हार तो पहनाते ही हैं, वो कामन बात है, लेकिन ये माला, इस माला का मतलब अच्छा है, बढ़िया है। ये माला यादगार माला है, सभी देखो, सभी का कांत कितना चमक रहा है, एक देखो देखो और कितने सारे गले जो है साफ सजे हुए हैं। हरेक सभी के गले देख करके कितने खुश हो रहे हैं, वाह वाह। तो बाबा भी गले में नहलाएं पहने देख करके खुश हो रहे हैं। सभी मालाधारी और शिकल देखो सबकी क्या है, बिल्कुल लाल लाल शिकल। तो ऐसे मालाओं से सजे हुए चमकती हुई मालाधारी बच्चे यहाँ से आकर के देखे कोई तो बिल्कुल चमकती हुई माला है और सभी की माला बहुत चमक रही है। सबके गले में बाबा की तरफ से मिली हुई मालाएं भी पड़ी हैं। सबके गले में है और वो मालाएं कितनी गले में सज रही है। बाबा हरेक के गले में बाबा चमक रहा है और हरेक गला देखो कितना चमकता है, क्योंकि माला आपकी यादगार में गाई हुई है। तो आज के दिन डायरेक्ट बाप ने आप सबको माला पहनाई है। सबको माला पहनाई है डायरेक्ट बाबा ने। गुलजार दादी के थ्रू नहीं, ब्रह्मा के थ्रू नहीं, डायरेक्ट बाबा ने। इसलिए ऊपर बोला यहाँ दिल्ली के बच्चों की जो जहाँ तहाँ माला डाल दिए हैं दिल की, दिल की मालाओं से सारा हाल सज रहा है। तो ये मालाओं का या आप किसका है, आप बच्चों का, किसके लिए था आप? कितनी चमकती हुई माला है, माला जो चमकी अपनी यारी है। चौबीस दो 2017 की अभ्यर्थवाणी का दूसरा पेज, एक दो की माला को देख करके कितने खुश हो रहे। तो आज हाल बहुत मालाओं से सजा हुआ है, सभी अपनी माला देख रहे हैं ना, सारे ये हाल में मालाएं देखो कितनी चमक रही है। न्यारे होकर के देखना। अभी सभी उठो तो माला जरूर देखना। ऐसे सजा हुआ बस सब माला से सजे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। हार पड़ा है तो हार पड़ा हुआ देख करके माया हार ही खा लेती है। मालाओं को देख करके ही सारी माला विजयी बन जाती है, इतनी चमकदार है। किस तरह की चमक है? जो चारों ओर चमक मार रही है, कहीं की चमक? ज्ञान की चमकदार माला है, देख रहे हो ना? देख रहे हो अपनी माला? पीछे वाले देख रहे हो? राइट वाले देख रहे हो? सब कितने सज गए हैं। चाहे किसको पड़ा है माला या नहीं पड़ा है, लेकिन वो खुद सज रहे हैं, क्योंकि बाबा ने आज सभी को माला का परिचय दे करके बिठाया है। माला का परिचय क्या? माला किस बात की याद जा रहे? माला संगठन की यादगार है। वो माला का परिचय दे करके बिठाया है। हर एक बच्चा संगठन रूपी माला से ऐसा सज गया है जैसे सदैव के लिए माला इन्हों का मणका है, गले का मणका। देख रहे हो अपनी मालाएं? हर एक के गले में देखो इतनी माला चमक रही है। जो आप भी खुद भी देख करके खुश हो रहे हो, देखने वालों की रस तो होती है ना जहां तहां। रस माने भीड़ भाड़। तो आज मालाओं की बहुत चमक है। एक माला कहा या अनेक मालाएं कही है? संगठन रूपी एक माला या अनेक प्रकार की मालाएं? एक माला की बात कही। दिल्ली वालों की तरफ इशारा किया। अनेक प्रकार की माला रूपी संगठन है, क्योंकि मुरली में पहले ही बता दिया था आठ राजाइयां ब्राह्मणों की स्पष्ट दिखाई देंगी। तो राजाइयों में संगठन तो होता है ना, तो हरेक अपनी माला को चमकते हुए भी देख रहे हैं। सबकी मालाएं यहाँ आकर के देखो, यहाँ माने कहाँ है, अभी पीछे बोला, यहाँ दिल्ली के बच्चों की मालाएं कहाँ है, दिल्ली के बच्चों की मालाएं, सबकी मालाएं यहाँ आकर के देखो। इससे पहले की अव्यक्त वाणी में बता दिया था, दिल्ली में राजाई का फाउंडेशन पड़ गया, आबू के हाल में ब्रह्मा कुमारियां बाबा के मुख पर हाथ रख करके बोल रही थी, बाबा आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, आप माउंट आबू में बैठे हैं। बाबा फिर भी बार बार दिल्ली की बात बोल रहे थे, तो बोला सबकी मालाएं यहाँ आकर के देखो, सबकी एक का माला रूपी संगठन देखो या अनेकों की देखो है, सबकी माला रूपी संगठन देखो तो देखो कितनी चमक रही है, एक एक माला की महिमा है। क्या कितना सजाने वाला कौन है, है? इन मालाओं के संगठन को प्रैक्टिकल में सजाने वाला कोई होगा या नहीं होगा, कौन है? मेरा बाबा। सब क्या कहेंगे, मेरा बाबा। एक संगठन की बात नहीं, सभी मालाओं रूपी संगठन यही कहेंगे मेरा बाबा। एक एक को आगे पीछे यहाँ वहाँ सबको देखो, मालाएं कितनी जल्दी आ गई और सभी के गले में पड़ भी गई, और सभी के गले में मालाएं कितनी सुंदर लग रही है। हर एक 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 की माला देख रहा है, सब मालाधारी हैं। बाबा को ऐसे फंक्शन में पतली सी माला भी बहुत अच्छी लगती है, पतली माला और मोटी माला का क्या मतलब है, है? अलग अलग राजाइयों का फाउंडेशन पड़ रहा है, अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड मालाएं हैं, अलग अलग प्रकार की धारणाओं वाली। तो कोई पतली माला है, कोई मोटी माला है, धर्म भी कोई मोटे होते हैं, बड़े बड़े धर्म होते हैं और कोई छोटे होते हैं। अभी देखो आप लोग आ गए तो कोई कोई ने माला पहनी हुई थी जो दिखाई दे रही थी। माला को देख करके हरेक के मन में आ रहा है माला में मेरा नाम तो है ना, है। सभी जो भी बैठे हैं उन सबका माला में नाम है। हाथ उठाओ, सभी को निश्चय है। अरे माला, माला हमारे लिए ही बाबा ने बनाई है, तो चेहरा देखो सभी का कितना अच्छा सज रहा है। चाहे कितना भी सजा हो, सबसे माला चमक रही है और चमकती हुई माला का चित्र सभी का बहुत अच्छा है, अपने पास रखने लायक है। बाबा से गिफ्ट लेकर जाना, आज की गिफ्ट जो है वो माला है। हरेक अपने को ऐसा चमकता हुआ माला का मणका समझते हैं। जो समझते हैं, मणका तो हमारे भी गले में पड़ गया है, वो हाथ उठाओ। वाह वाह, देखो माला से कितना सजा हुआ देखते हैं। और खास माला आज के दिन के लिए बाबा बनाता है। दादा आज का दिन कौन सा है? महाशिवरात्रि के दिन के लिए माला बाबा आज बनाता है। महाशिवरात्रि आएगी तो मालाएं पहले से बनी हुई होंगी या महाशिवरात्रि के बाद बनेंगी? आज के दिन के लिए बाबा माला बनाता है। तो आपको मिलेगी ना, फिर देखना आपको जो माला मिलेगी उसमें कितनी चमक है। सारा हाल भी देखो मालाओं से कितना सुंदर माला माल हो गए। अभी एक एक बच्चा देख रहा है, अभी क्या देख रहा है? मेरे गले में तो है नहीं, तो देख रहा है। जितना देखता है ना उतना मालाएं बढ़ती जाती हैं। मालाएं पड़ी हुई बाप दादा सभा को देख करके हर्षित हो रहे हैं। वाह वाह माला धारी, ये यादगार तो आपका ही है ना। मालाओं में जो भी मणके हैं वो आपकी आत्मा की यादगार है ना। और एक दो को देख करके कितने खुश होते हैं, वाह फलाने ने भी माला पहना दी। फलाने ने और भी है माला पहनाने वाला मुख्य कौन है? बाबा। फिर बोला बाबा तो है ही लेकिन फलाने ने भी माला पहनाई दी, नाम कोई का नहीं लिया। फलाने माने है? अरे आठ मालाओं की जिक्र किया है ना मुरली में, आठ राजाइयों के संगठन की बात कही ना, तो बाबा कौन सी माला के संगठन का माला पहनाने वाला है? सूर्यवंशी संगठन की माला बाबा पहनाता है, और बाकी और भी है माला पहनाने वाले विधर्मी जो अपने अपने संगठन वालों को माला पहनाते हैं, उनका नाम नहीं लिया। क्या कहा? फलाने ने भी माला पहनाई दी। बोले फलाने ने भी पहनाई दी, बाबा ने नहीं पहनाई। तो भी बोलते हैं वाह मेरा वाह मेरी माला। मालाधारी बच्चों को सभी देख करके मुस्कराए रहे हैं और सभी ने एक सेकंड में माला पहन ली, चाहे बाबा ने पहनाई और चाहे फलाने ने पहनाई। सभी अपने संगठन की माला को देख करके खुश हो रहे हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है, मालाओं को देख करके मालाधारी, मालाओं को देख करके, अपनी अपनी मालाओं को देख करके मालाधारी पहनने वाला याद आता है, याद जरूर आता है। आज खास मालाधारी बच्चे हैं, जैसे माला यादगार में है ना, ऐसे ये जो माला है वो यादगार है। सभी कितने अच्छे लग रहे हैं, सभी के गले में चमकता है, सभी का गला देखो कितना अच्छा लग रहा है। बाबा की मूर्ति में भी माला है। क्या कहा है? मूर्ति माने मूर्ति माने साकार, मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार। जिसकी मूर्ति ना हो तो बाबा की मूर्ति में भी माला है। माने साकार मूर्ति में भी माला है, भी क्यों लगा दिया? माना कोई और भी है, भी माने कोई और भी है, लेकिन अमूर्त है, अव्यक्त है, उसकी मूर्ति नहीं कहेंगे, उस मूर्ति में भी माला है। तो जो मूर्ति है और भी जिसके लिए लगाया मूर्त, वो मूर्त और अमूर्त एक ही है या अलग अलग है? हैं? अलग अलग है, एक ही है, हैं? मूर्त में अमूर्त समाया हुआ है, तो वो कौन सी मूर्ति है? बाबा ने जो साक्षात्कार से चित्र बनवाए हैं, उनमें वो मूर्त सो अमूर्त, जिसके लिए शास्त्रों में भी लिखा है सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण माने साकार, अगुण माने निराकार, दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि साकार में निराकार आया हुआ है। और याद भी किसको करना है? साकार में निराकार को याद करना है। तो साकार की मूर्ति में भी माला है, और जो अमूर्त है उसमें भी माला है। बताओ कौन है मूर्त, कौन है अमूर्त, और कौन है जो मूर्त है और अमूर्त भी है, दोनों का मेल है? जैसे कहते हैं बाप दादा है एक, चाहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वम एक को कहा जाता है या अनेकों को है? एक को कहा जाता है। तो जो एक है वो अव्यक्त मूर्ति भी है और व्यक्त भी है। बताओ वो मूर्ति कौन है, कौन से चित्र में है? है त्रिमूर्ति के चित्र में है। त्रिमूर्ति के चित्र में तो ढेर मूर्तियां हैं, ब्रह्मा की मूर्ति है, विष्णु की मूर्ति है, शंकर की मूर्ति है, परंतु त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सी एक मूर्ति? शंकर की मूर्ति। शंकर याद में बैठा पुरुषार्थ करने वाला पुरुषार्थी है या संपूर्ण शिव बाबा है? वो शिव बाबा है, है? नाम ही दो हैं, शिव माने निराकार, ज्योति बिंदु का ही नाम शिव है, और जिसमें प्रवेश करता है वो साकार बाबा कहा जाता है, ग्रैंडफादर। शिव ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप है सिर्फ, ग्रैंडफादर वगैरह कुछ नहीं। ये ग्रैंडफादर वगैरह दूसरे संबंध तब बनते हैं जब शरीर में प्रवेश करते हैं, तो अनेकों के अनेकों प्रकार के संबंध बनते हैं, उनमें मुख्य पहले पहले है ग्रैंडफादर शिव बाबा। तो यहां जो इशारा किया कि बाबा के मूर्ति में भी माला है। और अमूर्त में भी माला है, त्रिमूर्ति में वो मूर्ति कौन सी?
अभी शंकर था, अभी विष्णु हो गया
है। ऊपर का ऊपर क्या है?
विष्णु के चित्र के ऊपर जो पिंडी है,
विष्णु के मूर्ति के ऊपर जो सिर्फ बिंदी दिखाई दे रही है, बिंदी के आसपास लिंग नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे क्यों कहते हो कि बिंदी दिखाई दे रही है? धर्म पिताओं की तरह, धर्म पिता है तो विधर्मी है, तुम्हें बिंदी क्यों दिखाई दे रही है? साथ में दिखाई, माने किसके साथ? लिंग, वो मेरा बड़ा रूप है। बाबा कहते हैं ना, अगर तुम्हें मेरा छोटा रूप ज्योति बिंदु याद नहीं आता है तो क्या करो, बड़े रूप को ही याद करो, तो भी फायदा ही फायदा है। तो जो बड़ा रूप है वो मूर्त है या अमूर्त है? जो बड़ा रूप है वो मूर्त है, क्योंकि आंखों से अरे बड़ा रूप दिखाई नहीं देता साकार। तो अमूर्त है या मूर्त है? हैं? मूर्त है। फिर शंकर का जो चित्र या मूर्ति पुराने शिव के मंदिरों में चारों ओर देवताओं के बीच में दिखाते हैं, वो शंकर की मूर्ति मूर्त है या अमूर्त है?
बड़ी देर लगा दी।
तो शंकर की मूर्ति भी मूर्त है, और बीच में जो रखा हुआ है मंदिर में वो लिंग भी मूर्ति है। अंतर नहीं दिखाई देता? क्या अंतर है? जब इंद्रियां नहीं दिखाई देती हैं तो अमूर्त कहो ना। लिंग भी क्या है? अमूर्त है, लेकिन दिखाई तो देता है। भले हाथ पांव नाक आंख कान ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां नहीं है, फिर भी कर्म इंद्रियों में जो बहुत शक्तिशाली इंद्रिय है वो दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है? हैं? चुप, नहीं दिखाई देती? दिखाई तो देती है। जब वो मुख्य कर्म इंद्रिय दिखाई देती है, जो देह का ही अंग है, अमूर्त कैसे कहेंगे? दिखाई देती है तो मूर्त तो है, लेकिन हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां अन्य नहीं है, इसलिए अमूर्त है। इसलिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्तना। क्या? ये सारा संसार जड़ जंगम उसी अव्यक्त मूर्ति से जन्म लेता है, निकलता है, और ये सारा जड़ जंगम संसार उसी अव्यक्त मूर्ति में समा जाता है। जो अव्यक्त मूर्ति झाड़ के चित्र के ऊपर दिखाई गई है, जिसकी ओर इस संसार की सारी आत्माएं खींची हुई चली जा रही है, कौन आकर्षित करता है? है? अरे अपने आप खींची जा रही है या कोई खींच रहा है? है? खींची चली जा रही है, 500-700 करोड़ आत्माएं खींच रही है। खींचने वाले का नाम भक्ति मार्ग वालों ने कृष्ण रख दिया है। कृष्ण माने आकृष्ट करने वाला। वास्तव में कृष्ण खींचने वाला है। शक्ति वृक्ष का पहला पत्ता जो कृष्ण है, 16 कला संपूर्ण, वो अव्यक्त मूर्ति की ओर खींचने वाला है या खींचने वाला है? हैं? खींचने वाला है, स्वयं खींचने वाला है। वो तो खींचने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से पहला नंबर पत्ता है। तो वो कृष्ण खींचने वाला नहीं है, वो तो 16 कला संपूर्ण बनने वाला है, लेकिन बनाने वाला कोई रचयिता और है। कृष्ण जो रचना है षष्ठी रूपी वृक्ष की, खास मनुष्य षष्ठी वृक्ष की पहली रचना, पहला पत्ता, वो साकार है या निराकार है? साकार है। तो रचयिता कैसा होगा? साकार होगा। डॉक्टर डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर इंजीनियर बनाता है, ऐसे ही यहाँ जो बनाने वाला अव्वल नंबर साकार है वो क्या बनाएगा? साकार बनाएगा या निराकार बनाएगा? साकार ही है, परंतु वो बनाने वाला बाप समान भी है। जो बाप समान शक्ति का रचयिता है, अव्वल नंबर रचयिता है, जो मुसलमान और इस्लाम धर्म में भी गाया जाता है, अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। अंग्रेज लोग भी गाते हैं, हेवनली गॉडफादर। किस आधार पर हेवनली? हेवन की रचना करने वाला। तो वो हेवनली गॉडफादर जो साकार में हेवन रचता है, वो स्वयं साकार भी है, लेकिन साकार के साथ साथ निराकार भी है। और निराकार वो अपने पुरुषार्थ से बनता है, या कोई बनाने वाला पार्शियल उसे बनाता है? बनाने वाला पार्शियल है ही नहीं, वो तो सदैव पक्षपात रहित है। वास्तव में जिसे भगवान कहा जाता है, वो कभी भी पार्शियल नहीं हो सकता कि एक को बनाए और दूसरों को نہ بنائی. اور وہ تو بھگوان کیا ہے؟ بھگوان تو ज्ञान का अकूट भंडार है. ज्ञान माने जानकारी, झूठ की सत्य की जानकारी का भंडार है. सत्य क्या है? जो आदि में भी था, मध्य में भी होता है और अंत में भी होता है. और झूठ कभी होता है कभी नहीं होता है. जैसे विदेशी और विधर्मी धर्मखंड, बौद्धी धर्मखंड चीन जापान, इस्लामी धर्मखंड अफ्रीका अरब देश, क्रिश्चियन धर्मखंड यूरोप और अमेरिका, ये सच्चे हैं अविनाशी हैं या झूठे हैं? झूठे. तो आज से 2500 वर्ष पहले इनका अस्तित्व ही नहीं था. अभी इस झूठे खंड की दुनिया में इनका बुलंद अस्तित्व है. लेकिन महामृत्यु के समय फिर इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा. ये झूठ खंड हैं, इनकी धाराएं भी झूठी हैं, धर्म भी झूठे हैं और धर्म पिताएं भी झूठे हैं. ये खुद भी दुर्गति में जाते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी दुर्गति में ले जाते हैं. तो बताया, ये जो छोटी बड़ी पतली मोटी मालाएं हैं, इनको इतना सजाने वाला कौन है? बताया, मेरा बाबा. साफ कहेंगे, मेरा बाबा इन मालाओं को सजा करके सतो प्रधान साक्षी तो बनाता है. सभी धर्म के माला रूपी मणकों को सदगति में कौन ले जाता है? एक ले जाता है या अनेक धर्म पिता ले जाते हैं? एक ही बाबा है. मालाएं आज के दिन खास बाबा मनाता है. उन मालाओं में से एक माला बाबा के मूर्ति में भी माला है. बाबा की मूर्ति में भी माला है. मंदिरों में जाते हैं तो देवताओं की मूर्ति को ही माला चढ़ाते हैं शिव के मंदिर में. या बाबा का जो असली रूप है, जो सब देवताओं के सामने रखा हुआ है, उस पर भी माला चढ़ाते हैं. है? किस पर? शिवलिंग पर पहले माला चढ़ाते हैं. तो बाबा की मूर्ति में भी माला है. वो मूर्ति किसकी यादगार है? किस आत्मा की यादगार है? जिसको हाथ पांव ना कान नहीं है, वो कौन सी आत्मा है जो बुद्धियों के आधार पर ऐसी स्टेज में बैठी हुई है कि उसे हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियों की स्मृति नहीं है। वो माला बहुत अच्छी यादगार है, कौन सी माला? अरे जो बाबा की मूर्ति में माला है वो माला और मालाओं के बीच में बहुत अच्छी यादगार है। सभी कहाँ हैं? कहाँ बैठे हो? हाल में बाबा के गले में सब बैठे हैं। क्या कहा? बाबा के गले में सब बैठे हैं। सब माने है? सब माने कितने है? अरे बाबा के गले में सब माने कितने बैठे हैं? आठ में सब आ जाते हैं क्या? आठ में 9,16,108 ही आते हैं। जो आठ हैं वो सब धर्मों के पूर्वज नहीं है क्या? है? पूर्वज माने पूर्व माने पहले, जा माने जन्म लेने वाले। जितने भी धर्म हैं आस्तिक भगवान को मानने वाले, उन धर्म के फॉलोअर्स में सब कितने हुए है? अरे पूर्वज, उन पूर्वजों के अंदर से जो भी निकलते हैं आज नहीं तो कल, जैसे बच्चा बाप से निकलता है, वो बाप ग्रैंडफादर से निकलता है, बाबा कहते हैं, बाबा परबाबा से निकलता है, परबाबा परबा दादा से निकलता है। ऐसे ही करते करते 84 जन्मों की पीढ़ियों तक पहुंचो तो वही अष्टदेवों में से कोई एक बचेगा ना, जो अपने धर्म का पूर्वज है। तो उस बीज में कितने समाये हुए हैं? उस धर्म के, चाहे वो धर्म के फॉलोअर्स थोड़े हो और चाहे बहुत हो, क्रिश्चियंस की तरह बहुत, जैसे क्राइस्ट के फॉलोअर्स 200-250 करोड़ तक दुनिया में, 500 करोड़ की दुनिया में से क्रिश्चियंस कितने हैं? आधे हैं लगभग, लेकिन सब नहीं है समय हुए, अलग अलग ग्रुप्स के हेड हैं जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है। शिव की अष्ट मूर्तियां कही जाती हैं, अष्ट दिग्पाल कहे जाते हैं। दिग माने दिशाएं, चार दिशाएं और चार उनके कोण, आठ दिशाओं के पालने वाले दिग्पाल। उन आठ में सब माने कितने हैं, 500-700 करोड़ बैठे हुए। वो सब किसके गले का हार है? अरे बाबा के गले का हार है। वो बाबा कौन है? सदा परम धाम वासी ज्योति बिंदु बाबा है या बाप है? है वो तो बाप है। तो ये बाबा कौन जिसके गले के हार 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र बनते हैं, वो कौन है? है किस रूप में है? प्रजापिता जो पति पे है वो रूप है उसका। वो रूप क्या है, नाम नहीं पूछ रहे। हाँ, जिसको गीता में बोला है अव्यक्त मूर्तिना। सारा जन जंगम संसार उसी अव्यक्त मूर्ति से निकलता है। जैसे परिवार होता है ना, ये भी वसुधाव कुटुंबकम है। सारी वसुधा एक टाइम पर कुटुंब बनती है, तो उस कुटुंब का कोई बाप भी होगा ना। उस कुटुंब में जितने भाती हैं, वो कहां से जन्म लेते हैं? एक बाप से जन्म लेते हैं। बच्चे कहां से जन्म लेते हैं, किससे जन्म लेते हैं? मां से जन्म लेते, बाप से कहां लेते हैं? किससे जन्म लेते बच्चे, बाप से या मां से? लोग हंसीपुरी में पूछते भी हैं, अंडा आया या मुर्गी आया? मुर्गी पहले आई या अंडा आया? कौन आया है? मुर्गी आई, वो कहते मुर्गी आई, वो कहते अंडे में से मुर्गी निकली। आखिरी सत्य क्या है? सत्य यही है, ना अंडा पहले आया ना मुर्गी पहले आई। मुर्गी में भी अंडा कहां से आया, कहां से आया है? मुर्गी से आया। तो ऐसे ही सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि समाई हुई है, अव्यक्त रूप में समाई हुई है, उस अव्यक्त रूप का दूसरा नाम है परम ब्रह्म। क्या? परम ब्रह्म, बड़े से बड़ा ब्रह्म। अम्मा से ही बच्चों की पैदाइश होती है, जिसको कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो बाबा के गले में सब बैठे हैं 500-700 करोड़। 500-700 करोड़ निराकार आत्माओं की माला है बाबा के गले में। वो माला देखी है ना, तो माला देखी है, वो माला कितनी चमकती है, वो माला जिस माला में 500-700 करोड़ समय हुए हैं, कौन सी माला सबसे जास्ती चमकती है? है कौन सी माला सबसे जास्ती चमकती है? है कहाँ? अरे माला गले में भी पहनी जाती है, माला हाथों में भी डाली जाती है, बाहों में, तो कौन सी माला है जो सबसे जास्ती चमकती है, ज्ञान की रोशनी देती है? हाँ, जो सर पे 8 रत्नों की माला रखी हुई है, वो 8 ही रत्न हीरे समान चमकते हैं, क्योंकि 8 ही अपनी अपनी दुनिया के हीरो पाटधारी हैं। इतना चमकती है वो माला। लेकिन अगर घड़ी घड़ी आप नीचे ऊपर हुए, क्या कहा, वो माला चमकती तो सबसे जागती है अन्य मालाओं के बीच में, लेकिन आप अगर घड़ी घड़ी ऊपर नीचे होते रहेंगे तो फिर माला का शो क्या रह जाएगा? है घड़ी घड़ी नीचे ऊपर अवस्था होती रहेगी, उन आत्माओं की माला नीची कोटि में जाएगी, वो मन के रूपी आत्माएं नीची माला में जाएंगे या सबसे ऊपर की माला में जाएंगे? है नीचे की माला में जाएंगे। तो सभी अभी मालाधारी बनने बन करके अपने चित्र को देखो, क्या सभी देखो, कौन सभी, जितने भी पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थी XYZ हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में अभी हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सभी मालाधारी अभी मालाधारी बन करके अपने चित्र को देखो, कि मेरी मणका रूपी आत्मा का वो चित्र कहाँ पर है, कौन सी माला में है? सर्वोपरि रखी हुई माला में है, उस माला में भी अब्बल नंबर मणका है, मध्यम का मणका है या अंतिम मणका है? देखो क्या देखो, कि सभी का गला कितना सज गया है, अनेक प्रकार की मालाएं हैं ना, उन मालाओं में पतली मालाएं भी हैं, पतले मणकों वाली, मोटी मालाएं भी हैं, मोटे मणकों वाली, पावरफुल मणकों वाली, तो मालाएं जिन जिन मुखियाओं के गले में पड़ी हुई है उनका गला कितना सज गया है। और ये भी देखो कि ये सब मालाएं किसको पड़ेंगी, आखिरी अभी तो आठ ग्रुप बनेंगे। मुरली बोला है ना आठ राजाइयां ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देंगी, अभी फिलहाल तो दिखाई देंगी, लेकिन आखिरी महामृत्यु के समय क्या होगा, सब मालाएं ये सभी मालाएं किसके गले में पड़ेंगी है, सब इकट्ठी हो जाएंगी और बाबा के गले में पड़ेंगी। ये सभी आत्मा रूपी मन के किसके गले से होते हुए किसमें समा जाएंगे, मन मना भव हो जाएंगे। कौन कहता है मन मना भव, शिव बाप कहता है, है? शिव बाप नहीं कह सकता मन मना भव, मेरे मन में समा जा, उसको मन है ही नहीं, वो तो असोचता है क्योंकि उसे सोच विचार करने की दरकार ही नहीं, वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं जो सब भूल जाए, वो तो सदा त्रिकालदर्शी है। वो नहीं कहता क्या मन मना भव, कौन कहता है इस मनुष्य शक्ति रूपी रंगमंच का कोई हीरो पार्टधारी है जिसमें सदाकाल जीरो बन करके रहने वाली आत्मा मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है, कौन, शिव बाप। वो हीरो पाटीदारी कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, इसके मन में नहीं, उन धर्म पिताओं के मन में नहीं, किस में समा जा, मेरे में समा जा। अर्थात 500-700 करोड़ जो भी विधर्मी स्वधर्मी हैं मनुष्यात्मा उनके सबके मन के अंदर एक ही संकल्प हो, जो बाबा के मन में संकल्प है, जिस बाबा की संपन्न स्टेज का यादगार है शिवलिंग, भगवान बाप ब्रह्मा के तन से कहते हैं कि जिन मूर्तियों की पूजा होती है वो मेरी पूजा नहीं होती है, मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं, तो बताओ शिवलिंग किसकी मूर्ति की है यादगार है जिसकी पूजा होती है। कोई ब्रह्मा नामधारी है परंतु परम ब्रह्म है जिसके लिए गाते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, सबके लिए साक्षात होता है, 500 करोड़ को साक्षात्कार होता है बुद्धि का या बंद आंखों का, सब उसे पहचानते हैं और सब उसकी याद में समा जाते हैं। कौन सी याद? जिस याद में वो शिवलिंग स्वरूप बनने वाला जिस संकल्प में समा जाता है। कौन सा संकल्प? मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मुझे आत्मा का सुप्रीम सोल बाप भी ज्योति बिंदु, इसके अलावा कोई दूसरा संकल्प नहीं। वो कहता है, क्या कहता है? मन मना बाबा, मेरे मन में समा जा। ये क्यों नहीं कहता? ये माने वो क्यों नहीं कहता है?
सबको भी फाइनली उसमें मिलना है ना।
दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा क्यों नहीं कहती मन मना बाबा मेरे में समा जा? दादा लेखराज ब्रह्मा की तो वो स्टेज, वो निराकारी स्टेज शरीर रहते बनी ही नहीं पाई। भूत प्रेतों की कहो या फरिश्ताओं की कहो, वो स्टेज बन गई। जो फरिश्ताएं विदेशियों विधर्मियों में गाए जाते हैं, विदेशी विधर्मी देवताओं को नहीं मानते, किसको मानते हैं? एंजल्स को, फरिश्ताओं को मानते हैं। और हम है, हम देवताओं को मानते हैं या तो देवता बनाने वाले को मानते हैं। तो जो बनाने वाला है वो भी हमारा बाबा है, उसको शंकर बाबा नहीं कहा जाता। क्या? शिवलिंग की तरफ जब हम दृष्टि डालते हैं तो शिव बाबा नाम निकलता है या शंकर बाबा? शिव बाबा। शिवलिंग कहते हैं या शंकर लिंग? शिव नाम देते हैं, परंतु सुप्रीम सोल शिव ब्रह्मा के मुख से कहते हैं मेरी तो बिंदी का ही नाम शिव है। क्या? निराकार रूप का ही नाम, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु का ही नाम शिव है। लिंग तो बड़ा रूप है, है? वो मेरा नाम? वो मेरा नाम नहीं है, तो किसका नाम है? अरे काम के आधार पर नाम पड़ेगा ना? नहीं, अरे काम के आधार पर नाम पड़ेगा, तो ऐसा काम किसने किया? ऐसा काम जो निराकारी ज्योति बिंदु बन गया, साकारी से निराकार बन गया, ऐसा काम किसने किया? किसने पुरुषार्थ किया? जिस आत्मा ने ये पुरुषार्थ किया, क्या पुरुषार्थ? निराकारी निर्विकारी निहंकारी शिव समान बन गया, तो शिवलिंग कहा जाता है। शंकर जब तक पुरुषार्थी है तब तक उसे शिवलिंग नहीं कह सकते, क्योंकि उसको तो इंद्रियां दिखाई जाती हैं, वो देवता है। क्या था? वो देवताओं में बड़ा देवता है, जब तक तो पुरुषार्थी है यादता, तब तक क्या नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, भगवान का साकार रूप भी नहीं है। क्या कहा है? नहीं है। और भगवान का साकार रूप नहीं है, पुरुषार्थी है, तो सभी मनुष्य आत्माओं का बाप कहा जा सकता है? सभी मनुष्य आत्माओं का बाप तब ही कहा जाएगा जब 500-700 करोड़ उसको नतमस्तक हो जाए। चाहे 500-700 करोड़ में नास्तिक ही क्यों न हो, वो भी माथा झुका जाए और उसे याद करें, उस निराकारी बनने वाले की याद में अपनी आत्मा की स्मृति को चिरोहित कर दें, तब भक्ति मार्ग में ये एक यादगार बनता है कि आत्मा सो परमात्मा। परंतु वास्तव में सभी आत्माएं सदा काल के लिए परम पाटधारी परमात्मा नहीं बन सकती, वो तो सभी मनुष्य आत्माओं का एक ही बाप है जो पुरुषार्थ करके क्या बन जाता है, परम पाटधारी परमात्मा बन जाता है, जिसका गीता में भी वर्णन है। दो प्रकार की सामान्य रूप से आत्माएं, क्षर क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, और अक्षर, उनमें एक तुरीय आत्मा भी है जो कभी क्षरित नहीं होती। इस पतित दुनिया में पतित तन में आने के बावजूद भी पतित नहीं होती, वो है सुप्रीम सोल। बाकी सभी आत्माएं मनुष्य आत्माएं भी पतित होने वाली है, सदा काल पावन होने वाली अक्षर कोई भी नहीं है। परंतु एक और तीसरी प्रकार की आत्मा है, क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच जो पुरुषार्थ करके क्षर से क्या बन जाती है, अक्षर बन जाती है, कभी भी क्षरित नहीं होती, बन जाती है। बनने से पहले तो क्षरित होती होगी ना, पुरुषार्थी जीवन में भी संपन्न रूप बनने से पहले पतित क्षरित होती होगी या नहीं? परंतु मूर्ति उसकी बनाई जाती है, यादगार उसकी कायम होती है जो पुरुषार्थी से संपन्न रूप बन जाता है। तो शंकर का जो रूप है, मूर्त रूप, वो पुरुषार्थी रूप है, संपन्न रूप नहीं है। संपन्न रूप होता शंकर का याद में बैठा हुआ चित्र तो शंकर लिंग कहा जाता। क्या कहा जाता? शंकर लिंग कहा जाता। परंतु वो संपन्न जब तक हुआ ही नहीं तो ऐसे कहा भी नहीं जा सकता। वो तब ही कहा जाता है जब ऐसा संपन्न बन जाए जिस तरह की संपन्नता कोई भी मनुष्य मात्र कोई भी देवता धारण नहीं कर सकता। क्या देवताएं भी इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ तो करते हैं, इंद्रियों से कर्म करते याद में रहकर इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु जो प्रबलतम इंद्रिय है उसको 100% जीत नहीं पाते। एक ही मनुष्य आत्मा है जो उस प्रबलतम इंद्रिय को जीत लेती है। सदा शिव की याद में रह करके जो सदाकाल निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है उसकी याद में रह करके शिव समान बन जाती है। इसलिए एक ही आत्मा का वो संपन्न रूप शिव है जो वो संपन्न रूप शिव तो नहीं कहा जाता, क्या शिव तो एक ही आत्मा है, उस एक ही आत्मा का नाम शिव है, परंतु वो शिव समान बनने वाली आत्मा का नाम शिव के बाद जोड़ा जाता है। क्या कहते हैं? शिव शंकर, और उनका टाइटल भी देते हैं, शिव शंकर भोले भाले। क्या अंतर बताया? शंकर वाली आत्मा पुरुषार्थ करके संपन्न रूप शिव समान बनती तो है, लेकिन शिव समान सदा भोला नहीं है। क्या वो भाला रूप भी धारण करती है? भाला माने कांटा, छोटा होता है, थोड़ा दुख देता है।
और भाला बहुत बड़ा भाला,
वो बहुत दुखदाई, सारी दुनिया का दुखदाई साबित होता है, सारी दुनिया का विनाश करा देता है। सारी दुनिया का भला विनाश कराता है तो एटम बम नाम होना चाहिए है? एटम बम नाम क्यों देते हैं? क्योंकि एटम बम जो है वो तो क्षण भर में विनाश कर देता है, गिरा और उसकी चपेट में आने वाले सब हलाक। दुखदाई नहीं कहा जा सकता इतना, लेकिन जो काका होता है दुखदाई होता है, लगता है तो तुरंत खलास कर देता है। क्या है दुख दर्द लंबे समय तक चलता है ना, चलता है। कांटा का तो इलाज कर दिया जाता है, दुख दर्द खत्म हो जाता है, और भाला जिसको लगेगा तो क्या होगा है, खलास ही हो जाता है। दुख की स्टेज में खत्म होगा या सुख की स्टेज में खत्म होगा है? दुख की स्टेज में कुछ न कुछ हाय हाय करके खत्म होता है, तो अंत मते सौ गते हो जाती है। कुछ न कुछ है, कोई न कोई जन्म में दुख के जन्म की अनुभूति करेगा या नहीं करेगा। इसलिए बोला ब्रह्मा के मुख से भगवान ने मुरली में बोला, गीता ज्ञान वाणी में बोला, क्या है कि मैं सारी दुनिया को ज्यादा दुख नहीं देता हूं, इसलिए आखिरी विनाश है एटम बम। तो ज्यादा दुख देने वाला कौन है? शिव या शंकर? जो दुख देता है वो कभी सुख भी देता है या नहीं देता है? है सत्व प्रधान है तो सुख देता है, और तमो प्रधान आत्मा बनती है तो दुख देता है। छोटे आदमी का बच्चा कुसंग में आएगा तो कम दुखदायी बनेगा, और बड़े आदमी का बच्चा कुसंग में आएगा तो जास्ती दुखदायी बनेगा। और बड़े से बड़ा कौन है दुनिया में? अरे आत्मिक स्थिति नहीं रहती, इसलिए देह की ही बात बताता है। बड़े से बड़ा दुनिया में कौन है? जो दुनिया में बड़े से बड़ा पार्ट बजाता है, शिव बाप। जो बड़े से बड़ा बाप है उसका, जो बड़े से बड़ा बच्चा है उसका टाइटल लगा हुआ है शिव के साथ, शिव शंकर। अव्वल नंबर नाम शिव, द्वयम नंबर नाम शंकर। अव्वल नंबर टाइटल है भोला, शिव भोला भंडारी। कभी नहीं कहेंगे शिव भाला भंडारी, लेकिन दूसरा नाम क्या है? है दूसरा नाम शंकर है, उसका टाइटल आता है भाला। शिव शंकर भोले भाले। तो साकार दुखदाई होता है या निराकार स्टेज में टिकने वाली आत्मा दुखदाई होती है? तो साकार और निराकार का मेल है। साकार है क्या? किसकी यादगार? शंकर की यादगार। और निराकार शिव की यादगार। दोनों का मेल है शिव शंकर, जिसे शिवलिंग कहते हैं। तो बोला बाबा बाबा ने ब्रह्मा मुख से बोला, ये सब मालाएं किसको पड़ेंगी? हैं? शिव बाबा को पड़ेंगी या बाबा को पड़ेंगी? शिव बाबा को पड़ेंगी। मालाएं किसके गले का हार?
जीरो पार्ट जारी।
हाँ जी, बाबा तो संगम पर माला नहीं पहनता। क्या कहा? बाबा जो साकार निराकार का मेल है वो संगम है। निराकार साकार का संगम हुआ ना, तो संगम पर माला नहीं पहनता। कब पहनता है? है संगम पर माला पहनता है या बाद में पहनता है? जब सत्य युग शुरू होता है आदि, बाप और बच्चों के साथ माला पहनता है। चौबीस दो सत्रह की वाणी का तीसरा पेज। इसका साथ नहीं भी होना इसका माला का साथ नहीं भी होना तो खोया हुआ अपनी माला का मणका लेके जाना। क्या? क्योंकि तो बहुतों को पता नहीं होगा, पक्का निश्चय नहीं होता होगा कि मैं सूर्यवंशी माला का मणका हूँ, चंद्रवंशी का मणका हूँ, इस्लामियों के बीच जन्म जन्मांतर जाने वाला मणका हूँ, या कौन से धर्म के बीच रहने वाला मणका हूँ। पक्का पता है सबको? सबको तो पता नहीं होगा। ऐसा निश्चय बुद्धि बनने में नीचे ऊपर हो रहे होंगे। तो खोया हुआ अपनी माला का मणका अभी लेके जाना निश्चय बुद्धि बन करके। तो आज सभी के गले में चमकती हुई मालाएं देख करके कितने खुश हो रहे। एक दो की मालाएं देख रहे हैं ना, तो सबके दिल से वाह वाह निकल रहा। अच्छा, अभी तो देरी हो जाएगी, इसलिए सभी बच्चों को मालाधारी बनने माला में दिखाया है। शशि बहन ने कहा, बाबा सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन नेपाल तमिलनाडु का है। बाबा ने कहा आए। बहन ने कहा 26,000 आए हैं, 25,000 ईस्टर्न जोन के आए हैं। एक हजार विदेश के आए हैं। ईस्टर्न जोन वाले 20,000 हैं सब। 1 बंगाल, फिर बिहार, उड़ीसा, आसाम खड़ा हो जावे। देखो कितने सुंदर हो गए हैं। सभी ने कुछ न कुछ पहना हुआ है। शशि बहन ने कहा, बंगाल बिहार उड़ीसा आसाम चारों मिलाकर के 15,000 है। फिर कितने रह गए है? 5,000 कहाँ के? नेपाल जोन के है। मोस्टली संख्या महाशिवरात्रि के दिन कहाँ से आई है? अरे ईस्टर्न जोन से आई। महाशिवरात्रि पर जो चमकती हुई माला वाले होंगे, जिनकी रोशनी ज्ञान की बहुत चमक रही होगी माला के मणकों की, वो कौन से जोन से प्रत्यक्ष होंगे? है ईस्टर्न जोन से प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि ज्ञान सूर्य कहाँ से उदय होता है? है ईस्टर्न जोन से प्रत्यक्ष होता है। ईस्टर्न जोन में भी कौन सा देश है? जहाँ आज से लेकर के आज अंत तक भी राजा रानी का राज्य है, वो भी पहले नेपाल का हिस्सा था। कौन सी भाषा बोली जाती है नेपाली से मिलती जुलती? नेपालियों में भी एकदम ईस्टर्न पूर्वी इलाका, अष्टदेवों में शंकर की मूर्ति कौन सी दिशा में दिखाते हैं? एक दो को देख करके ही सज गए हैं। वाह, देख देख कर बाप भी मुस्काए रहे हैं। वाह बच्चे वाह। शशि बहन ने कहा, अभी सभी बैठेंगे, अभी भी सभी बैठ के चित्र निकाल के जाना, भाग नहीं जाना। बहन ने कहा, अभी नेपाल वाले खड़े होंगे, बाबा नेपाल वाले 2,500 हैं। कितने होने चाहिए? 2,500 क्यों बोला? तो पूरा नेपाल ईस्टर्न नहीं कहा जाएगा, ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ है ना, नेपाल का एकदम ईस्टर्न हिस्सा भूटान है, और उसका नाम भूटान क्यों पड़ा है? नेपाल का नाम नेपाल क्यों पड़ा है? क्योंकि नई दुनिया के पालने वालों का नाम नेपाल पड़ा है संगम में। तो बेहद का नेपाल है, ये हद का नेपाल है। ऐसे ही नेपाल का ठेठ पूर्वी हिस्सा भूटान है, क्या नाम भूटान, क्या मतलब भू माने भ्रू, भ्रू माने भौं, तान माने तांदी। जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है किसी को, तो क्या करते हैं, भौं तान के देखते हैं, ऐसे करके भूटान। शास्त्र में भी लिखा है, ब्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, सपने संकट पर ही किसोई। जिसके ब्रकुटी के तानने मात्र से, ब्रकुटी विलास मात्र से सारी सृष्टि प्रलय को पाती है, उस पर स्वप्न में भी कोई संकट कोई दुख नहीं आ सकता। तो बोला नेपाल वाले 2500 आए हैं, तो कितने रह गए अब है, 2500 रह गए। तो कहां के होंगे, लेकिन जो पहन कर आए हैं ना, क्या पहन कर आए, संगठन रूपी मालाएं पहन कर आए हैं ना, उसको थोड़ा ठीक करो। पहनने वाले हरेक को देख रहे हैं और हरेक को देखकर टैली कर रहे हैं कि मेरी माला कहां तक चमक रही है, है? हर संगठन की माला की ज्ञान की चमक अलग अलग प्रकार की होगी कि एक ही जैसी होगी। तो देख रहे हैं कि मेरी माला कहां तक चमक रही है, और देखो अपनी माला को कि कितने परसेंटेज की चमक है। एक एक माला के मणके की चमक देखो कितनी है। शशि बहन ने कहा अभी नेपाल वाले बैठेंगे, अपना हाथ हिलाते हुए बैठेंगे, और अब तमिलनाडु वाले खड़े होंगे, टोटल कितने बताए थे है, 26000 बताए थे। उन्होंने 25000 ईस्टर्न जोन के, तमिलनाडु भी कौन से जोन में आता है, ईस्टर्न जोन में आता है, ये भी 3000 है। अच्छी, ये भी माने ये कि ये जिसकी तरफ इशारा किया 3000 भी कह दिया, मैंने कोई से टैली किया है, ये भी 3000 हैं। अच्छी चमक अच्छी है और बनाई है, बनाई भी अच्छी है। बहने का सब हाथ हिला करके बाबा को फिर बैठेंगे, सब ऐसे करके दिखाओ अपने हाथ में ऐसे पकड़ो, देखो अभी सब आकर के देखो माला कितनी चमक रही है, चारों ओर ये चमकती हुई मालाएं कैसी अच्छी लग रही है। बहन ने कहा अभी तमिलनाडु वाले हाथ हिलाकर बैठेंगे बाबा को, तमिलनाडु भी बैठे, सभी जो भी हैं वो बैठ करके अपनी माला का शो दिखा रहे, बैठो सिर्फ बैठो, ज्यादा श्रृंगार व्यंगार नहीं करो। अभी तक जितने जितना किया है श्रृंगार उतना ही किया है, कभी ज्यादा करने के चक्कर में नहीं पड़ो, जितना किया है उतना ही संभाल कर रखो और दिखाओ बस। ऐसे क्यों कह दिया है, ऐसे क्यों कह दिया? अरे कोई कारण नहीं है, अरे भूल गए है? कितने वर्ष पूरे होने वाले हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के? 50 वर्ष पूरे होने वाले, 40 वर्ष पूरे होने वाले हैं, 40 वर्ष पूरे होंगे और 76 में तो एक युगल ग्रमण के को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। और अब 8 आत्माएं निकलेंगी, जिनके संगठन के निकलने पर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। तो 8 के अलावा सब कौन सी स्टेज में जाएंगे है? श्रृंगार करने वालों की स्टेज में जाएंगे या श्रृंगार उतरने लगेगा? 76 से टैली करो, 76 में रुद्रमाला के मणकों का श्रृंगार चढ़ती कला का था या उतरती कला का था? है, है? चढ़ती कला का था, उनमें भी अव्वल नंबर 1 का था और बाकी सब बेसिक वाले तब से उसी समय से उतरती कला में आने लगे या चढ़ती कला में जा रहे हैं? है, उतरती कला में आ रहे हैं। क्यों है? इसलिए उतरती कला में आ रहे हैं कि 76 में पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश कहा था, ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया के संगठन का विघटन बता दिया। तो पुराने ब्राह्मण समाज का जब विघटन होता है तो नीचे गिरते हैं या ऊपर चढ़ते हैं, रावण राज्य में आते हैं या राम राज्य में जाते हैं? ऐसे ही यहाँ के प्रत्यक्ष होने के बाद बाकी ये गिरती कला में होंगे या चढ़ती कला में होंगे? माया आठ के अलावा सबको नीचे गिराएगी नंबर वार या ऊंचा ले जाएगी? ये बोला, क्या बोला? अभी ज्यादा श्रृंगार विंगार नहीं करो, जिसने जितना किया है उतना ही किया है। अब दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं, जो बिगड़ती हुई स्थितियां परिस्थितियां माहौल तुम्हें श्रृंगार अब नहीं करने देंगी। तो जितना श्रृंगार किया है उतना ही श्रृंगार दूसरों को दिखाओ, ज्यादा दिखावा न करो। बाबरे, शशि बहन ने कहा, बाबा डबल विदेशी 75 देशों से 1000 आए। क्या आए? तो 75 देशों से हैं, लेकिन संख्या सिर्फ 1000 है। क्यों? ईस्टर्न जोन से महाशिवरात्रि के समय इतनी संख्या क्यों? विदेशों से क्यों नहीं? है? जरूर ज्यादा महत्व है, इसलिए उनका देश भी ईस्टर्न जोन में है, जहाँ से शूटिंग पीरियड में भी ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। कहाँ से है? कहाँ से प्रत्यक्ष हुआ? बंगाल से। सब डबल विदेशी भाई बहने खड़े होकर के हाथ खिलाएंगे। शशि बहन ने कहा, अच्छा आज डबल विदेशी डॉट डॉट करके कुछ उड़ा दिया, बहन ने कहा सबसे ज्यादा इस ग्रुप में है, कितना अच्छा है, चमक कितनी अच्छी है। सबसे ज्यादा इस ग्रुप में है, किसके लिए कहा? है? शशि बहन ने किसके लिए कहा सबसे ज्यादा इस ग्रुप में है? बात किसकी हो रही थी? तमिलनाडु की। बाद में डॉट 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 रख दिया, इसका मतलब प्रसंग बदल गया। इसलिए बहन ने कहा सबसे ज्यादा इस ग्रुप में है, तमिलनाडु के लिए नहीं कहा। कितना अच्छा है, चमक कितनी अच्छी है। हर एक के पास अपने ये लगाने का है, बस बाबा ने दिया और लगाया। चमक देखो सारे हाल की, कमाल है, कितनी सुंदर हो गए सभी ये हार वाले, हार वाले। आप निशानी अगर अपने पास अपनी रखनी चाहो तो बाप दादा सभी के मालाओं की यादगार हरेक को ऐसे करो, तो ऐसे जो ये मणका है पीली पीली वो देखो कितनी सज रही है। ऐसे चमक रही है जैसे अभी अभी डॉट 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 आई है, स्वर्ग से आई है। माला कहाँ से आई है? स्वर्ग से आई है। स्वर्ग से आई है महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि के दिन से जब बाप आते हैं आत्माओं का, तब दत्त से राजधानी स्थापन करते हैं स्वर्ग की, या उससे पहले ही स्वर्ग होता है? बाप जब आते हैं तो बताया ब्रह्मा मुख से मुरली में दत्त से राजधानी स्थापन कर देते हैं, गाया हुआ है जनक को एक सेकंड में दत्त से काय का वर्षा मिला, जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। जीवन में दुख दर्दों से मुक्ति तो स्वर्ग में ही होगी ना, तो एक सेकंड में स्वर्ग का वर्षा देते हैं शिवरात्रि पर आते ही। तो कौन सी माला है जो ऐसे चमक रही है जैसे अभी अभी स्वर्ग से आई है? महाशिवरात्रि से पहले स्वर्ग होता है क्या? अरे तो क्यों बोल दिया स्वर्ग से आई है? स्वर्ग से आई है ऐसे नहीं बोला, जैसे जैसे स्वर्ग से आई है क्यों बोला? दो दो बातें बोलते हैं, दो बातें नहीं बोलते। अव्यक्त बाप दादा की वाणी भी एक ही बात बोलती। 2004-2005 के बीच क्या बोला था अव्यक्त वाणी में? तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है, तो जो सौगात दी है जिनको, वो जैसे स्वस्थिति में रहने वाले ग्रुप स्वर्ग के संगठन का जैसे अनुभव करते होंगे या नहीं करते होंगे, उसी ग्रुप के लिए बोला। देखो कितनी चमक रही है, सज रही है, जैसे चमक रही है जैसे अभी अभी आई है, स्वर्ग से आई है, कितना अच्छा। आप देखो सभी अपने हार को थोड़ा ऐसे हार करके देखो अपने ही पास, अपने को ही देखो, औरों को ना देखो, अपने को ही देखो तो कितने चमकते हैं। जो आप बैठे हो आप ही बदल जाते हो हार पहनाने से। एक आप खुद मालिक हो चमकने वाले, और दूसरा फिर हाल भी मिला है वो भी बहुत चमक रहा है, और तीसरी चीज हार मिला है। क्या हार मिला है? हार की महिमा तो सबसे ज्यादा है। तो अभी तो सिर्फ देख लो, फिर कोई टाइम बाबा اٹھوا کے دیکھیں گے
یہ کیا.
ابھی اپنی مالا کو دیکھ لو, پھر کوئی ٹائم ایسا آئے گا. کیا کہا, بھوشیہ کی بات بتائی نا. پھر کوئی ٹائم بابا اٹھوا کے دیکھیں گے, اٹھا کے دیکھیں گے یا اٹھوا کے دیکھیں گے؟ اٹھوا کے دیکھیں گے, خود اٹھائیں گے مالا کے منکوں کو یا کوئی کے دوارا اٹھوائیں گے؟ کون ہوں گے وہ؟ آٹھ. کوئی ٹائم بابا آٹھ کے دوارا اٹھوا کے دیکھے گا. ششی بہن نے کہا, ابھی سبھی ڈبل ودیشی بھائی بہنیں پیارے بابا کو ہاتھ ہلا کر کے بیٹھیں گے اپنے استھان پر, اور اب بابا کے ساتھ ہمارا فیسٹیول بھی ہونے والا ہے, جھنڈا روہن آدی سب ہونے والا ہے. ابھی اپنی جو مالائیں ہیں وہ چمکتی ہوئی ہے, تو اور سب کچھ چھپا کے صرف مالاؤں کا سنگار سجا کر آگے کرو. تو دیکھو سبھا کیسی اچھی لگتی ہے. اناؤنسمنٹ ہوا, اب اس کے بعد دادی جانکی جی, دادی رتن موہنی جی, دادی نرملا, منی بہن بابا کے سامنے آئیں گی, باپ دادا سے ملن منائیں گے. اب اس کے بعد نرویر بھائی اور برج موہن بھائی منج پر آئیں. کون منج پر آئیں؟ اور ترمورتی میں سے دو مورتی کیوں رہ گئی؟ کہاں چلی گئی ہے؟ مکھوانشاولی یا کھوانشاولی؟ تو جو کھوانشاولی ہوں گے, کوک دادا لیکھ راج برہما دیہ داری کی ہوگی, کوک مانے گود, یا نراکاری کی ہوگی؟ دیہ داری کی ہوتی ہے, اور مکھ تو نراکار نے لیا ہے. اس کو مکھ کو فالو کرنے والے مکھ ونشا والی. تو تیسرا جو مورتی ہے تین بھائیوں میں, وہ کہاں چلی گئی؟ وہ بھی کھ ونشا والی براہمن تھے, ان کے بیچ چلی گئی. جس کی کوک تھی وہ جہاں چلا گیا, اس کی کوک تھی برہما کی. تو دادا برہما لے, برہما دادا جہاں چلا گیا اس کی گوکھم کوک میں بیٹھنے والے بھی, کوک کو یاد کرنے والے بھی وہیں چلے گئے. جھنڈا روہن کے بعد باپ دادا کی مہابت. اوم شانتی. ابھی آپ سبھی اکٹھے ہوئے ہو اس لیے آپ کا کام یہاں مکھی کیا ہے؟ پریورتن کرنے کا. تو پریورتن کیا, ابھی سبھی ایور ریڈی رہو. پریورتن کرنا ہے ایسے سمجھو ہو گیا ہے. نہیں کرنا ہے تو چکر لگا کے آئے. کیا کہا, اگر آپ گانٹھ باندھ لی ہے کہ ہمیں پریورتن نہیں کرنا ہے اپنے بھاؤ سوبھاؤ سنسکار کا, اوگنوں کا, تو کیا کریں؟ کہاں पुरानी दुनिया में चक्कर लगा के आए, ब्राह्मण की दुनिया से चले गए। तो देखो, सभी देखो, प्यार से देख रहे हैं ना, आराम से देखा ना। इस सारे साल की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। जो आज का दिन है उसका विशेष मनाने का दिन है आज। तो सभी ने अपने अंदर ये दीपक जलाया, झंडा भी लहराया, दीपक भी जलाया, सभी के चेहरे में चमक आ गई है, खुशी है ना, सभी के शिकलों में खुशी की झलक आ गई है। पीछे वाले क्या समझते हो, सभी के दिल में दिल आराम है, है? क्या समझते हो, वहां जो सभा बैठी हुई है ब्राह्मणों की, उनसे पूछा क्या समझते हो, सभी के दिल में दिलाराम है, दिल को आराम देने वाला है कि परेशान करने वाले बैठे हैं, दीदी दादी दादाएं कौन ज्यादा याद आते हैं, बताया नहीं, पूछा बस, दिलाराम और दिल वाले, जितनी भी चाहो चीजें उतनी आ सकती हैं, लेकिन सिर्फ अभी तक संगम निवासी सीख रहे हैं, ज्ञान नहीं गए हैं, संगम निवासी जान नहीं गए हैं, सीख रहे हैं जानना। लेकिन बाबा चाहता है कि एक एक बारी बाबा कहे ओम शांति, सारी सभा ने कहा ओम शांति, और ऐसे सभी हर्षित, जैसे हमारा ये सूर्य और चंद्रमा कितना सज जाता है, देखा है ना, और कितना अच्छा सज करके नजर आता है, कब सज जाता है, सूर्य तो हमेशा ही सजा हुआ है, लेकिन चंद्रमा कब सज जाता है, पूर्णमासी कही जाती है, जब ज्ञान चंद्रमा शंकर के मस्तक पर अधूरा चंद्रमा नहीं रहता, न शंकर अधूरा अपूर्ण, और न चंद्रमा अपूर्ण, दोनों ही पूर्णमासी पर अधूरे नहीं रहते, देखा है ना, और कितना अच्छा सज करके नजर आता है। तो आज दीपावली की मुबारक हो,
क्या कहा, दीपावली की मुबारक हो,
महाशिवरात्रि है, ये दीपावली है, है? तो दीपावली क्यों कहा, है? है? जो आठ हैं उनकी ओर विशेष नजर है, तो बोला दीपावली की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।